ओम शांति। संबंधों में संवादिता, ये हमारे अभी के सत्र का विषय है। जीवन की मूल सत्यता तो ये है, जो कल फर्स्ट लेसन में आपने समझी है, कि हम अकेले आए हैं और अकेले हमें वापस जाना है। मूल सत्यता तो ये, लेकिन उस अकेले जाने और अकेले आने के बीच में जो जीवन की यात्रा हमें मिली है, उसमें हमें अनेकों के साथ संपर्क में आना होता है, संबंधों में आना होता है, और उस हिसाब से ही कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, वो अकेला जी नहीं सकता है, क्योंकि इंसान के अंदर फीलिंग्स है, सेंसिटिविटी है, इमोशंस है। इतनी फीलिंग्स इमोशंस और जानवरों में नहीं होते हैं जितने विकसित मानव के अंदर, और यही कारण है कि वो सबके संपर्क में आता है, अनेक अनेक संबंधों में जुटता है। मूल माता पिता भाई बहन के संबंध होते हुए भी हम अन्य अनेकानेक मित्र संबंधियों के संबंध में आते हैं। हमारे पारिवारिक जीवन के, सामाजिक जीवन के और कार्य क्षेत्र के अनेक संबंधों में हम बंधते हैं। हम ये संबंधों में क्यों बंधते? बेशक व्यक्ति भावनाशील है, अकेला जी नहीं सकता है, इसलिए जो घर बार छोड़ के, समाज को छोड़ के जंगल में चले गए, वे भी वापस समाज में आकर ही आश्रम बना करके बैठे हैं। लेकिन दूसरा भी एक कारण है कि हम अनेकों के संबंध में, संपर्क में क्यों आते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे से कुछ आदान प्रदान करना होता है। हमें सर्व के सहयोग से जीवन जीना होता है, और उस हिसाब से हम रिलेशन की एक प्रकार से ये भी व्याख्या कर सकते हैं कि संबंध माना गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ लव, लाइफ एंड पावर, आपस में स्नेह का आदान प्रदान होता है। व्यक्ति को स्नेह चाहिए, साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। लाइफ मीन्स नॉलेज। एक दूसरे मिलते हैं, हम अपने विचारों को शेयर करते हैं, अपने विजडम को शेयर करते हैं, अपने अनुभवों को शेयर करते हैं, वो भी आपसी संबंध संपर्क में आते हैं, तभी ही तो कर सकते। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, व्यक्तिगत रूप से आप अपने आप में नॉलेजेबल है, शक्तिशाली है, वेल सेटल्ड है, लेकिन हमारे यहाँ आने का एक कारण ये भी है कि हमें अनेक स्थानों से आए हुए भाई बहने मिलेंगे, एक दूसरे मिलना जुलना, विचारों की लेन देन, ये इसको कहेंगे गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ लाइफ। नॉलेज को हम लाइफ कहते हैं। एंड पावर, एक से दो भले हम कहते हैं ना, व्यक्ति एक अकेला करे और दो मिलके करते हैं तो वो एम्पावर हो जाता है, उसको एक साथ सहारा मिल जाता है तो व्यक्ति के अंदर शक्ति आ जाती है। इसलिए संबंधों का विस्तार हम इसलिए करते, लेकिन हमें जीवन में ये भी अनुभव है कि आज कई बार कई संबंध संबंध के बजाय बंधन का कारण बन जाते हैं। एक दोस्त से जो हमें सहयोग स्नेह साथ शक्ति चाहिए, इसके बजाय आजकल संबंधों में विषमता भी आने लगी है, क्लैशिश भी होने लगे हैं और इसलिए व्यक्ति व्यक्ति से संबंध रखने से अब कतराता है और ये चाहता है कि इससे तो हमारा जानवरों से पंछियों से संबंध। विदेशों में ये वातावरण हम देखते हैं कि अब अकेले अकेले जीने वालों की संख्या बढ़ रही है, परिवार टूट रहे हैं और भारत देश जहां संयुक्त परिवार की प्रथा थी वहां भी अब पश्चिम की संस्कृति के प्रभाव में और वर्तमान हमारे जो भाव स्वभाव है उनका स्वरूप इस प्रकार का हो गया है कि अब संबंध टूटने लगे हैं, परिवार टूटने लगे। तो आज हम इन बातों पर देखेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जो इन संबंधों को तोड़ते हैं और ऐसी कौन सी धारणाएं हैं जो हम इन संबंधों को बना कर रख सकते हैं। कई बार बहुत छोटी सी सामान्य बात के कारण बरसों के संबंध हम तोड़ देते हैं। उस समय हमारे अंदर कौन सी बातें चाहिए, एक बार का अनुभव मैं आपके सामने रखूंगी, क्योंकि हमें भी यहाँ समर्पित होने के बाद संगठन में ही रहना है, जिम्मेवारियां निभानी होती है और सेवा का कारोबार करना होता है। एक व्यक्ति ने झूठ बोला और उसके कारण मेरा विश्वास उनसे टूट गया और हमने दादी को कहा कि मैं इस व्यक्ति के साथ काम नहीं करूं, आप मेरी सेवा बदल दीजिए, डिपार्टमेंट चेंज कर दीजिए। लेकिन दादी ने उस समय मुझे समझाया कि इस एक गलती के कारण या उसकी उस एक कमी के कारण अगर आप विश्वास को तोड़ देंगी तो वो भी तो वाइब्रेशंस उसको जाएंगे और वो फील करेगा कि अब इनको मेरे साथ विश्वास नहीं रहा है, तो कभी भी तुम्हारे दो के बीच का जो संबंध है वो बनेगा नहीं, हमेशा के लिए एक दूसरे से दूरी बन जाएगी। इसलिए एक ही भूल या एक ही कमी के कारण विश्वास को नहीं तोड़ो, विश्वास बनाए रखो, लेकिन खबरदार भी रहो, वॉचफुल भी रहो ताकि दोबारा ऐसी कोई बात ना। अगर इस प्रकार की गहरी अंडरस्टैंडिंग या इस प्रकार का विशाल विजडम हमारे पास ना हो तो हमारे संबंध टूटते रहते हैं। और आप जानते हैं कि संबंध बनाने में बरसों लगते हैं लेकिन तोड़ने में तो कोई एक ही कारण में एक सेकंड में वो संबंध टूट जाते। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगी कि वो कौन से कारण हैं जो संबंधों को तोड़ देते। पहले हमारे जीवन की व्यवस्था इस प्रकार की थी, पारिवारिक जीवन की, कि लोग आपस में बैठते थे, मिलते थे, बात करते थे। थोड़े समय पहले का ही जीवन पद्धति देखें, शाम को लोग इकट्ठे होके प्रार्थना करते थे, भजन गाते थे और इस प्रकार आपस में मिलकर दिन भर की बातें हम एक दो के साथ शेयर करते थे। लेकिन जब से लोगों की जीवन पद्धति भौतिक बन गई है, पश्चिम की संस्कृति की प्रभाव में है, अब व्यक्ति इतना व्यस्त रहता है कि उनको आपस में एक दो के साथ बैठकर शेयर करने का समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। अपने नौकरी धंधे से आते हैं, आकर घर में भी टीवी के सामने आकर बैठ जाते हैं, इसलिए एक दोस्त से जो बात करते थे, शेयर करते थे, वो नहीं हो रहा है। व्यक्ति को अपनी फीलिंग्स वेंटिलेट करने का कोई स्थान नहीं रहा है। और जहां ये टीवी पहले सबको ड्राइंग रूम में एक साथ बिठाता था, आज जब से अनेक चैनल हुई है, वो भी साथ बिठाना भी अब टूट गया है। हर एक के अपने अपने कमरों में टीवी है, बच्चे कुछ और देखना चाहते हैं, माँ कुछ और देखना चाहती है, पिताजी कुछ और देखना चाहते हैं। इसलिए मुख्य कारण एक ये है, कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप, जहां कम्युनिकेशन गैप है वहां मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न होती। हर कोई अपने में इतना व्यस्त है, हम एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं है, इसलिए एक दूसरे से हमारी दूरी बढ़ती जाती है। साथ होते हुए भी जब आप आपस में मिलेंगे नहीं, बात करेंगे नहीं, शेयर करेंगे नहीं दिन भर का कारोबार, तो नेचुरली एक दूसरे से हमारी दूरी बन जाती। ऐसे ही एक धनाढ्य परिवार के बच्चे की बात आपने सुनी होगी कि पिता ने, माता ने उस बच्चे के पढ़ने, खेलने, परवरिश के लिए हर प्रकार का प्रबंध करके दिया था, लेकिन फिर भी वो उदास रहता था। एक दिन उसने अपने माँ बाप को कहा कि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि घर में क्या हो रहा है। तो उसके पिताजी ने कि कहा कि ठीक है, कल से तुमको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लगेगी। दूसरे दिन से उस बच्चे के कमरे के दरवाजे पर वो शीट लगा दी जाती थी और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती थी कि पिताजी आज इस टूर पर जा रहे हैं, इस मीटिंग में जा रहे हैं, मम्मी आज इस मीटिंग में जा रही है, वहां उस पार्टी में जा रही है। बच्चे को सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लगी, लेकिन फिर भी वो बच्चा उदास रहता था, क्योंकि उस बच्चे को क्या चाहिए था? उसे केवल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी, लेकिन उसे वो लव चाहिए था, वो वॉर्म्थ चाहिए था, वो अपनापन चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। इसलिए सब सुविधाएं और साधन होते हुए भी वो बच्चा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था और उदासी का अनुभव कर रहा था। आज अपार संसार व्यक्तियों से भर रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, संबंधों का विस्तार बढ़ रहा है, लेकिन इस अपार मनुष्यों की भीड़ के बीच में भी इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसे जो चाहिए वो लव, वो वार्म, वो कैरिंग, वो अपनापन उसे आज नहीं मिल रहा है। इसलिए कम्युनिकेशन गैप ये भी एक कारण है रिलेशंस को ब्रेक करने के लिए। आपका अपना भी ये अनुभव होगा कि जहां रिलेशंस अच्छे हैं वहां कम्युनिकेशन भी इजी होता है, और कम्युनिकेशन गैप जहां होता है वहां रिलेशंस ब्रेक हो जाते हैं। व्यक्ति भर साथ रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो प्रेशर से करते हैं, लव से नहीं करते। दूसरा कारण मिसअंडरस्टैंडिंग, हम एक दो को यथार्थ समझ नहीं पाते। आज सबसे बड़ी चीज यही है कि व्यक्ति व्यक्ति को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी लिमिटेशंस क्या है, और मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ या जीवन जी रही हूँ उनकी भी लिमिटेशंस क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है। अगर हम एक दो को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो भी हमें संबंधों में कलुषितता बनी रहे। एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि जीवन क्या है, या तो गैर समझ है या तो बेसमझ, माने समझ ही नहीं है और है तो एक दो के लिए उल्टी समझ है, यथार्थ समझ नहीं। इसलिए जीवन अनर्थों से भर गया है और जो हमें अमन चैन जीवन में महसूस होता था वो नहीं हो रहा है। क्यों व्यक्ति सुसाइड करते हैं, क्यों घर बार छोड़ते हैं, क्यों अलग रहते हैं, क्यों लोग जंगलों में भाग जाते हैं, क्योंकि संसार जीने योग्य नहीं रहा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग। तीसरा है लैक ऑफ ट्रस्ट, एक दो पर विश्वास नहीं। हरेक को एक दो से भय है कि ये कहीं मेरे से आगे निकल जाएगा, ये कहीं मेरा स्थान छीन लेगा, पता नहीं ये वफादारी से काम करेगा ही नहीं। एक दोस्त से धोखा मिलता है, बेवफाई होती है, वो फेथ नहीं, ट्रस्ट नहीं है, इसलिए भी उखड़े मन से एक दो के साथ रहते हैं और कारोबार करते। चौथा कारण है एजम्पशन, अनुमान। एक दो पर व्यक्ति खुद जैसा होता है दूसरों के लिए भी वो ऐसा सोच लेता है। वास्तविकता सत्यता हम एक दो की पता नहीं होती है और अनुमान लगा लेते हैं। छोटा सा इंसिडेंस मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि वो कितने बड़े झगड़े का कारण बन जाता है। एक हमारा सेवा केंद्र था और हमारी बहनें वहां रहती थी और वहां के आसपास वालों ने एक बार, जो भी भाई बहनें रहते थे, उन्होंने कंप्लेन किया कि फलाना भाई जो आता है वो बहनों के कपड़े धोता है। हेडक्वार्टर से बड़ी बहन को वहां भेजा गया कि भाई वहां जो वातावरण बन रहा है क्या कारण है, वहां जाकर के इंक्वायरी करें, देखें बात को। वो बहन जी को वहां भेजा गया और उसने बहनों से पूछा कि क्या आप कपड़े भाई से धुलवाते हैं। बहनों ने बोला कि हाँ। किस भाई से धुलवाते हैं? उस भाई को बुलाया गया कि आप क्या सेंटर के बहनों के कपड़े धोते हैं? कहते कि हाँ, क्योंकि मैं धो भी, मैं तो सबके कपड़े धोता हूं। अब ये बात न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग और उसके कारण क्लैश। तो कितनी जीवन के अंदर भी प्रैक्टिकल, हमें एक दो के लिए हम अनुमान लगा लेते हैं कि जरूर ये वहां ही गई होगी, जरूर वो इससे मिली ही होगी, जरूर वो उनसे बात किया होगा, ये लेट आए हैं तो जरूर इसका, और इस प्रकार के जो एक दो के लिए अनुमान लगाते हैं वो हमारे संबंधों को सरलता से चलने नहीं देते हैं। पांचवा कारण है सेल्फिशनेस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि स्वार्थ, आज संबंधों में स्वार्थ आ गया और स्वार्थ के कारण जो निस्वार्थ भावना से, निष्काम भावना से एक दो के लिए हमें जो काम करना चाहिए वो हम नहीं करते। आज मॉर्निंग में ही हमारा जो डेली डिस्कोर्स चला है, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं, आज उसी विषय पर था कि कई प्रकार की इंसान को कामनाएं होती है और उन कामनाओं के कारण हमारी एक दो के प्रति जो शुभ भावना रहनी चाहिए वो भी नहीं रहती। व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत कामनाएं होती है। हमें दूसरी बात हमें बताई गई कि हमें कई प्रकार की चीजों की कामनाएं होती है। जो मेरे पास है वो कम है और भी मुझे चाहिए, ये रोग आज हर इंसान को लगा हुआ है और उस कामना के वश ही मन की शांति आज रही नहीं। कहते ना भाई, आपकी घर की गाड़ी, आपकी कार पुरानी कब हो जाती, आपकी गाड़ी पुरानी कब आपको लगने लगती, जब पड़ोस में नहीं आती। तो हमें अपनी गाड़ी पुरानी लगने लगती है कि भाई अब हमें भी दूसरी इससे और अच्छी लानी। तो कामनाओं का कोई अंत नहीं। चीजें वस्तुएं इतनी उत्पन्न हो रही है कि उन चीजों की प्राप्ति की इच्छाओं के वश। तीसरा हमें बताया कि संबंधों में कामना स्वार्थ आ गया। आज किसी के साथ भी कुछ हम करते हैं, हमें अंदर से मतलब रहता है, स्वार्थ रहता है कि इनसे मुझे ये काम निकलवा दें। कई बार हम बाह्य व्यवहार, शिष्टाचार, बहुत प्यार का और सहयोग का दिखाते हैं, लेकिन अंदर मतलब होता है कि अभी इनको सहयोग दो क्योंकि बाद में हमें इनसे बहुत बड़ा काम करवाना। और सेवा की क्षेत्र में भी कामनाएं आती है कि भाई मेरा नाम हो, मेरी प्रसिद्धि हो। तो आज का हमारा मॉर्निंग डिस्कोर्स इसी विषय पर था और इतने तक कि भगवान के साथ जो हमारे संबंध है वो भी अब निस्वार्थ भाव के नहीं है, है ना, वो भी कामना के वश। पहले लोग भक्ति प्यार से करते थे, भगवान की महानता के कारण करते थे, आज है जो भय के कारण करते हैं और मतलब से करते हैं। भाई मेरी ये मान्यता पूरी हो जाएगी तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये यात्रा करूंगा, मैं इतना दान पुण्य करूंगा, मैं इस प्रकार की कथा का आयोजन करूंगा। तो निस्वार्थता जो मनुष्य की विशेषता थी वो आज नहीं रही है। इसलिए हर कोई एक दो के साथ जो नेचुरल संबंध और व्यवहार में आते थे, इसके बजाय मतलब से आते। अनफुलफिल्ड कमिटमेंट्स, संबंध टूटते कई बार इस कारण से भी है कि हम कमिटमेंट कर लेते हैं और फिर उसको निभाते नहीं, हमारे में वो प्रतिबद्धता नहीं है। हाँ मैं जरूर तुम्हारा ये काम कर दूंगा, हाँ मैं जरूर वहां आ जाऊंगा, और फिर प्रैक्टिकल हम कर नहीं पाते हैं। व्यक्ति एक बार हमें माफ करेगा, दो बार माफ करेगा, तीन बार माफ करेगा, फिर तो उनका विश्वास उड़ ही जाएगा कि भाई इस पर हम विश्वास नहीं रख सकते हैं, ये कह रहा है पर करेगा कुछ नहीं। हाँ ये बोलने में बड़ी बड़ी बात करता है, प्रैक्टिकल ये कुछ भी नहीं करेगा। तो नेचुरली व्यक्ति एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। और मेन रीजन है ईगो क्लैशिस, एक दो के साथ हमारे अहम टकराते हैं, इसलिए कौन किसकी सुने और कौन किसकी माने। हर क्षेत्र हमारे यहाँ कई इंडस्ट्री के ग्रुप्स आते हैं, स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स आते हैं खास मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, और वो लोग हमें यही बताते हैं कि इंडिविजुअली व्यक्ति कैपेबल होता है, बहुत पावरफुल होता है, लेकिन जहां कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, परिवार में, सोसाइटी में, जहां मिलके काम करना है, एक दो के ईगो क्लैश होते हैं। इसलिए एक दो को सुनते नहीं है, एक दो की बात मानते नहीं है, इसलिए मिलके काम कर नहीं पाते। आप सबको पता होगा कि सबसे पहले इंडस्ट्री के क्षेत्र में मैनेजमेंट स्टाइल अमेरिका के तरफ से जो निकला था, उन्होंने यही बताया कि यू कम विथ योर हैंड्स, वी शैल यूज अवर हेड, हम अपने दिमाग चलाएंगे। आप सिर्फ अपने हाथ अपनी कला लेकर के आइए और यहाँ काम करिए। इससे इंडस्ट्री की व्यवस्था शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि बहुत धीरे धीरे उसमें विकास होता था, इसलिए फिर दूसरी जैपनीज मैनेजमेंट सिस्टम निकला कि केवल आप हाथ लेके नहीं आए लेकिन अपने हेड्स को भी लेकर आए। हमें आपकी केवल स्किल्स नहीं चाहिए लेकिन हमें आपकी क्रिएटिविटी भी चाहिए, आपके दिमाग की भी हमें आवश्यकता है। और उसके कारण जो 18 मास में एक कार तैयार होती थी वो 18 दिन में तैयार होने लगी, इतना क्विक प्रोडक्शन होने लगा और बहुत जल्दी से उद्योग का विकास हुआ। लेकिन आज हर उद्योग के क्षेत्र में ये अनुभव में आने लगा है कि जहां हर कोई अपना दिमाग भी लगाएगा तो वहां क्या होगा, क्लैशिश होंगे। इसलिए अब भारत की स्पिरिचुअल मैनेजमेंट सिस्टम कि भाई आप अपने हाथ लेके आए, अपने हेड लेके आए, लेकिन साथ साथ अपने हार्ट भी लेकर के आए, अपने गुणों को लेकर आए, दिल से काम करें, अपने पन से काम करें, जिम्मेवारी से काम करें। तो ये ईगो जो है, क्योंकि आज का एजुकेशन, आज की जो हमारी फॉल्स आइडेंटिटी है वो ईगो को डेवलप कर। इसलिए क्यों आपको कल फर्स्ट लेसन मॉर्निंग में सेल्फ रियलाइजेशन पर दिया गया कि वास्तव में हम कौन हैं। हम जो मान रहे हैं कि मैं मिस्टर फलाना हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये हमारी फॉल्स आइडेंटिटी, ये हमारी रियल ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं। ये तो विनाशी परिवर्तनशील परिचय है। हमारा वास्तविक स्वरूप है कि हम सभी आत्माएं। तो ये सोल कॉन्शियसनेस जितना डेवलप होता है तो वो ईगो को ब्रेक करता है। इसलिए हमेशा हमें समझ लेना चाहिए कि जहाँ ईगो है मीन्स वहाँ मिथ्या ज्ञान है या अज्ञान। सही ज्ञान नम्रता लाता है, अभिमान नहीं लाता। तो ये ईगो, बॉडी कॉन्शियसनेस और उसके आधार पर जो अहम डेवलप होता है वो भी क्लैश का कारण। कई बार हम छोटों की बात नहीं मानते हैं, भले वो बात अच्छी है, पर ईगो कि ये कौन मुझे कहने वाले। इसलिए कई बार हम बहनों की, बच्चों की बात सुनते नहीं, अपने छोटे साथियों की बात सुनते नहीं है, क्योंकि हमें ईगो है कि आप कौन मुझे कहने वाले। और इसलिए हमें आज के डिस्कोर्स में ये भी बात आई थी कि जिनको ईगो होता है उसकी प्रवृत्ति कौन सी रहती। जहां अभिमान है वो दूसरों का अपमान करने का कार्य कर, और जब आप दूसरों का अपमान, क्योंकि उनका ईगो है इसलिए वो दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, तो ना अभिमान में आना है ना अपमान करने में आना। तो ये ईगो भी हमारे संबंधों को तोड़ने का कारण है। स्टबर्ननेस, हट, जिद, व्यक्ति जिद में आ जाता है और अपने आप को ही सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। मैं ही राइट हूँ, मेरी ही बात मानी जानी चाहिए, मेरा ही प्लान स्वीकार होना चाहिए। ये जिद भी वास्तव में अंदर में जो ईर्ष्या, घृणा, द्वेष की भावनाएं हैं, उसकी ये निशानी कि हम अपने आप को सही सिद्ध करना चाहते। और इसलिए हमें यहाँ सिखाया जाता है कि जो जिद वाला होता है वो अपने को सिद्ध करने की भी कोशिश करता है। मेरी गलती नहीं है, मैंने तो राइट ही किया है, वो अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करेगा। इसलिए सत्यता तो यह है कि जो सत्य है उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं रही। सत्य के लिए कहा जाता है कि जो सही है वो स्वयं सिद्ध ही है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं। तो जहां हम जरूर गलत होते हैं या अपने विचार को ही महत्व देते हैं, वहां हमारे में ये हट और जिद की बात आती है। और उससे भी साथी लोग नाराज हो जाते हैं कि ये तो हर बार अपनी ही बात मनवाते हैं, हमारी बात को मानते ही नहीं। बॉसीनेस, एग्रेसिवनेस, हर समय हर कोई हमें ही बड़ा थोड़ी स्वीकार करे। वे आप अपने ऑफिस में बॉस है, आप अपने चार साथियों के परिवार में बड़े हैं, लेकिन हर स्थान पर, हर कार्य में, हर बात में, हर व्यक्ति के साथ आप बॉसीनेस करेंगे तो कौन स्वीकार करे? जरूर कहीं आपको अपना अपमान सहन करना ही पड़ेगा। और इस प्रकार एग्रेसिवनेस भी हमारा कौन टॉलरेट करे? तो इस प्रकार के जो हमारे नेचर है वो हमारे संबंधों को तोड़ते हैं, और नेचुरली लोग हमें दूर रखने की कोशिश करेंगे कि इनको इन्वॉल्व नहीं करो, नहीं तो यही बॉस बन के बैठ जाएगा, दूसरों को आगे ही नहीं आने देंगे। इरेस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी की संभालता नहीं रखना, लापरवाही, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं है तो भी हम अपने कार्य क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते, भाई ये जिम्मेवारी नहीं उठा सकते हैं, ये लापरवाही से चलते हैं, अपना भी नहीं संभालते हैं। कई बार घर में हम देखते हैं कि हम खुद अपना भी कारोबार, अपनी चीजें, अपनी व्यवस्था भी ठीक से नहीं चलाते, तो वो व्यक्ति भी दूसरों के लिए हेडेक बन जाता है ना, क्योंकि उनका काम दूसरों को करना पड़ता है। तो नेचुरली जहां टीम में, ग्रुप में वर्क करना है, वहां उसको कोई लेगा नहीं कि भाई इसके अंदर कोई जिम्मेवारी की सेंस नहीं, यहां करेगा और कह के चला जाएगा, काम अधूरा रह जाएगा। आपको कोई चीज लाने के लिए कहते हैं, कोई काम करने के लिए कहते हैं, जवाबदारी की सेंस नहीं होती है तो हम यही उत्तर देते हैं कि भाई मैं भूल गया। सबसे सहज उत्तर है मैं भूल गया, और इस प्रकार हम अपने को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इंटरफियरेंस, आज तो छोटे बच्चों को भी इंटरफियरेंस पसंद नहीं, आप उसको कुछ करेक्शन दो, कुछ कहो, वो भी नहीं सुन सकते। हमने ये चीज देखी, विदेश में मैंने एक चीज देखी कि वहां आपस में लव एंड कंसर्न नहीं है, तो ये भी मैंने देखा कि वहां एक दो में इंटरफियर भी नहीं कर। यहां आपस में लव है, कंसर्न रखते हैं, लेकिन ओवर अटैच हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा एक दो में इन्वॉल्व होने से फिर वो इंटरफियरेंस शुरू हो जाता। इससे भी लोग चिढ़ते हैं कि ये हर बात में माथा मारते, इसलिए हमें कहां कितना इन्वॉल्व होना है और कहां कितना डिटैच रहना है, वो बैलेंस जीवन में चाहिए, जिसको हम यहां सरल शब्दों में कहते हैं न्यारा और प्यारा रहने का बैलेंस चाहिए। प्यार से देते हैं तो अटैच हो जाते हैं, एक दो में इन्वॉल्व हो जाते हैं और इंटरफियरेंस शुरू होता है। न्यारे रहते हैं तो एक दो से रुखे रुखे चलते हैं, रुठते भी है किनारा कर देते, तो इसलिए दोनों का बैलेंस चाहिए जीवन के अंदर। कहां हमें साक्षी होके काम करना होता है, कहां हमें साथी बन के चलना है। जहां आप साक्षी नहीं बन पाते हैं तो आप इंटरफियरेंस शुरू करते हैं, और इसलिए फिर वो दूसरों को पसंद नहीं आता। तो अनावश्यक बिन जरूरी बातों में हमें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं। हम पढ़ते थे, हमें संस्कृत में कहानी आती थी कि कुछ बंदर थे, बारिश के दिन थे, वो ठंडी के मारे कांप रहे थे। तो ऊपर पेड़ पर एक छोटी चिड़िया भी बैठी थी, तो उसने कहा कि आप अभी ठंडी में बारिश में भीग के इतने कांप रहे हैं, क्यों नहीं हमारी तरह आप भी थोड़ा घोंसला बना लेते या घर बना लेते। तो वो उनका सुन नहीं सके और उन्होंने मिलके वो चिड़िया को ही मार दी। इसलिए आज जब हरेक का हम देखते हैं कि आज के एजुकेशन से, आज के इंफॉर्मेशन युग में व्यक्ति का अपना ईगो ज्यादा डेवलप हुआ है, तो हमें आवश्यकता अनुसार ही बात कहनी चाहिए या उसके काम में इन्वॉल्व होना चाहिए। जहां आवश्यक नहीं है, वो चाहते नहीं है, हमारी बात की वैल्यू नहीं रखते हैं, वहां हमें बोल बोल करने की जरूरत नहीं। तो इसमें हमारा अपना रिस्पेक्ट रहता है। पजेसिवनेस, एक दो पर अधिकार कर लेना। और मैंने ये देखा है कि जहां समझो संबंध प्यार से शुरू होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे व्यक्ति अधिकार करने लगता, और वो पजेसिवनेस चाहे व्यक्ति के ऊपर पजेस कर लेना, चीजों पर, अपने अधिकारों पर, अपने फ्रीडम के क्षेत्र पर, जहां भी आपका पजेसिव नेचर है, तो दूसरे आपके साथ डेवलप नहीं हो सकते, वो उग नहीं सकते, उनका विकास नहीं हो सकता, इसलिए नेचुरली फिर वो आपको नहीं चाहेगी। ये विश्व सबका घर है, यहाँ सबको जीने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपने विचार देने का अधिकार है, हमें सबको चांस देने चाहिए। ये अलग बात है कि हम विवेक से बोलना सीखे, रिस्पेक्ट से बोलना सीखे, लेकिन अधिकार तो सबको है ना। अगर वहां हम दमन करते हैं, किसी पर आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं, तो वो व्यक्ति फेंके जाते हैं, उनको लोग स्वीकार नहीं करते। तो ऐसा हमारा नेचर ना हो कि भी घर में मैं कहूँ ऐसा ही हूँ, मैं कहूँ ऐसे ही चलना है, मैं कहूँ ऐसे ही पहनना है। नहीं, जैसे हम अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं, हम दूसरों की आवश्यकताओं को भी प्राथमिकता दें। और इग्नोरिंग, कई बार हम एक दो को इग्नोर करते हैं, वो भी व्यक्ति से सहन नहीं होता। आखिर हर इंसान एक चैतन्य शक्ति है, हरेक का अपना रोल है, हरेक की अपनी विशेषता है, हरेक की अपनी वैल्यू है। हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, हमें हरेक की वैल्यू करनी चाहिए। तो अगर हम किसी को इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, तो भी उनसे सहन नहीं होता है और हमारे संबंध टूटने लगते। कई बार कोई अच्छी बातें हमें कहते हैं, सही बातें बताते हैं, हम सुना अनसुनाई करते रहते, ध्यान पर ही नहीं लेते, अपने मिजाज से ही चलते हैं, अपनी ही मनमानी करते। तो संगठन में, परिवार में ये चीजें नहीं चल सकती है। जहां, और संगठन माना जहां दो व्यक्ति भी साथ में आए, वहां ये चीजें संस्कार काम में आएंगे ना, और तुरंत हमारे संबंधों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और ये भी एक कारण है, केयरलेसनेस। आज व्यक्ति स्व केंद्रित ज्यादा बन गया है, हमें एक दो के प्रति परवाह नहीं, इसलिए हु केयर्स, हमें क्या पड़ी। ऐसी एक भावना व्यक्तियों में आज ज्यादा डेवलप हो रही। अगर हम अपने साथियों की, अपने पड़ोसियों की, अपने बच्चों की, अपने बड़ों की, अपने लेवल के व्यक्तियों की जितना एक दो की परवाह हम करते हैं तो वो एक मानवता का व्यवहार लगता है। और तब एक फैमिली के हिसाब से हम जी सकते हैं और फैमिली के हिसाब से जो हमें प्राप्ति होनी चाहिए वो भी हम कर सकते हैं। जहां हम ये फील करते कि भाई संगठन में रहना, परिवार में रहना, अनेकों के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है, वहां लोग टूट के अलग रह के आज वो भी रिजल्ट अनुभव कर रहे हैं कि जब हमें बड़ों की, अनुभवियों की और अपने साथी संबंधों की छत्र छाया नहीं मिलती है तो भी हमारे जीवन का क्या हाल होता है वो भी तो हमने अनुभव कर लिया। हमने कैलिफोर्निया में एक वृद्धाश्रम, जिसको हम भारत में कहते हैं नर्सिंग होम वहां कहते हैं, उसका हमने विजिट लिया था और वहां सभी एजेड लोग जो है उनको वहां एडमिट किया जाता है और गवर्नमेंट उसकी संभाल रखती है क्योंकि वहां फैमिली लाइफ तो है नहीं। तो सचमुच मैंने देखा कि 80% से भी ज्यादा जो भी उसमें एजेड लोग रहते थे और गवर्नमेंट उसकी संभाल करती थी, 80% से भी अधिक लोग जैसे पागल से लगते, मतलब मानसिक रूप से इतने विक्षिप्त लगते थे। और जहां भारत में हम देखते हैं कि अभी खैर ये चीज बढ़ गई है, लेकिन आज से 25 वर्ष पहले की बात करें और आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग वृद्ध लोग अभी भी मानसिक रूप से भी कितने शक्तिशाली और स्वस्थ होते हैं, वहां वो चीज नहीं थी क्योंकि उनके बच्चों को, उनकी बेटियों को, उनके भाई बहनों को उनसे मिलने की फुर्सत नहीं। वो कार्ड लिख देते हैं आप स्वस्थ रहें, जन्मदिन पर उनको बधाई भेज देते हैं या फूल भेज देते हैं, लेकिन उनको समय देने की फुर्सत नहीं, उनके साथ प्यार से बैठ के बात करने की फुर्सत नहीं। तो इस प्रकार का जीवन भी जीवन नहीं रहता है, उसमें सुख अनुभव नहीं होता है। तो इस प्रकार के कई कारण हैं जो हमारे संबंधों को तोड़ देते हैं। तो हमें शांति से सोचने की आवश्यकता है कि कौन सी ऐसी धारणाएं हम जीवन में करें जो हम इन संबंधों को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब आप साइलेंस में बैठ के यहां सोचेंगे आप अनुभव करेंगे कि सबसे पहली हार्मनी हमारी अपनी पर्सनालिटी में ही नहीं। आप देखिए हमारी जो मुख्य तीन एनर्जी है, जो हमारी मुख्य तीन प्रक्रियाएं हैं, हमारी इन तीन एनर्जी में ही हार्मनी नहीं। मन, वाणी और कर्म, ये तीन मुख्य क्रियाएं हैं जो व्यक्ति की चेतना को अभिव्यक्त कर। आज आपने फर्स्ट लेसन में समझा कि आत्मा क्या है, मन, बुद्धि, संस्कार का चैतन्य समूह, और वो चैतन्य सत्ता इन कर्मेंद्रियों से मुख्य तीन प्रक्रिया करती है, सोचने की, बोलने की और कर्म करने। तो ये जो हमारी तीन एनर्जी है उसमें ही हार्मनी रहे। हम सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, हमारी कथनी और करनी में फर्क है। ड्यूअल पर्सनालिटी है, हम अंदर एक है, बाहर दिखाते दूसरा। आज हमारे घर में हम आराम से बैठे हैं, होलीडे हैं, संडे हैं, मूड में है मनाने के, और अचानक सुबह सुबह मेहमान आ जाते हैं। मुख से तो हम कहेंगे आइए आइए, हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन मन में हम क्या सोचते, भाई ये कहां से आ गए। तो हम अंदर एक है, बाहर दूसरा दिखा, इसलिए कॉन्स्टेंट हमारी पर्सनालिटी क्रश होती है, क्योंकि हम अंदर दूसरे हैं, दिखाते दूसरे हैं, इसलिए हमारी फीलिंग जो है वो कुचल, और इसलिए हमें टेंशन होता है, क्योंकि हमारे में रियलिटी नहीं। हम अपने ग्राहकों को, अपने साथियों को दिखाते क्या है और होते क्या है, सोचते क्या है, बोलते क्या है, करते क्या है, कितना अंतर। कई बार हम बहुत अच्छा सोचते हैं, एक्यूरेट अंडरस्टैंड करते हैं, मुख से बोलते भी है, कमिट भी करते हैं, प्रैक्टिकल कर पाते हैं, इसलिए हमारी इन तीन शक्तियों में, हमारी मुख्य तीन प्रक्रिया में ही सामंजस्य है। जब हमारी पर्सनालिटी में हार्मनी नहीं है तो हमारे रिलेशन में हम कहां से हार्मनी लाए, क्योंकि वही पर्सनालिटी वहां भी तो वर्क करेगी। इसलिए आपको बताया होगा कि क्यों ओम शांति शब्द बार बार यहाँ एक दो को याद दिलाया जाता है, कि ओम शब्द ही ये तीनों प्रक्रिया को व्यक्त करता है। आ उ मा, ओम आ उ मा, आ मीन्स आचरण, उ मीन्स उच्चारण, मा मीन्स माइंड विचार, एक्शन अटरेंस एंड माइंड थॉट्स, ये तीनों की हार्मनी हमें लाना है, तो सिंपल सा अभ्यास है अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। हम स्व में स्थित नहीं है, इसलिए हमारी पर्सनालिटी में हमारे जो ओरिजिनल गुण है वो नहीं, और आज हरेक आत्मा संबंध क्यों जोड़ती है, आज आपने सुबह समझा है कि हमें प्यार चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, पावर चाहिए, और वो पाने के लिए हम व्यक्तियों से, वस्तुओं से रिलेशन जोड़ते हैं, लेकिन वहां से कहां मिलेगा जब व्यक्ति के अपने अंदर ही नहीं। इसलिए हार्मनी हमारी पर्सनालिटी में आएगी तो रिलेशन में तो ऑटोमेटिक आएगी, रिलेशन अपने आप इंप्रूव होते। हमें यहां अनुभव है कि ये एजुकेशन आपको स्पिरिचुअल लग रहा है, लेकिन स्पिरिचुअली अपने आप को ठीक करने से बिहेवियर में ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आती, व्यवहार कुशलता स्वतः आती। इसलिए योग की एक व्याख्या ये है, योगः कर्मसु कौशलम्। योग वो है जिससे कर्म में कुशलता आती, क्यों आफ्टर ऑल हर सिस्टम में, हर साधन के पीछे व्यक्ति ही तो काम कर रही है, और नेचुरली मेरे जो स्वभाव संस्कार है, मेरी जो लिमिटेशंस है, कैपेसिटी है, वो मेरे कार्य क्षेत्र को भी तो प्रभावित करेगी। इसलिए अगर मैं अपने आप को इम्प्रूव करती हूँ, एम्पावर करती हूँ, डिविनाइज करती हूँ, तो ऑटोमेटिक मेरे रिलेशन, मेरा कार्य, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए ये कुछ धारणाएं हैं, मुख्य तीन गुण हैं जो संबंधों को ठीक करने में चाहिए, लव, फेथ एंड रिस्पेक्ट, ये तीन की वैल्यूज है जो संबंधों को ठीक करने में चाहिए। प्यार, वो प्यार आज नहीं रहा। प्यार या वासना का रूप ले चुका है या मोह आसक्ति का रूप ले चुका है। जो शुद्ध आत्मिक स्नेह है हर इंसान के लिए वो आज नहीं। बॉडी कॉन्शियस होने के कारण देह के धर्म, जाति, भाषा, आयु, प्रांत, लिंग के कितने भेद हमारे अंदर आ गए, इसलिए हमारे स्नेह में भी अंतर आ जाता। जब आप सोल कॉन्शियस बनते हैं, इन सब दीवारों से ऊपर उठ जाते सभी आत्माएं, और हम सभी आत्माएं एक भगवान के बच्चे, हमें सबके लिए प्यार, ये रूहानी प्यार हमें यूनाइट करता है। बॉडी कॉन्शियस का प्यार हमें डिवाइड करता है। वो प्यार नहीं है इसलिए दूरी हो गई है, बल संसार छोटा बन रहा है। विज्ञान टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट इतनी है, हम कहते हैं विश्व एक ग्लोबल विलेज बन रहा है। हम यहां बैठे सेकंड में अमेरिका बात कर सकते हैं, पर हम आपस में बात नहीं करते। एक कमरे में साथ रहने वाले एक दूसरे से बात नहीं करते, इसलिए वो तो साधनों की विशेषता है, टेक्नोलॉजी की विशेषता है कि उसने हमें इतने कम्युनिकेशन के साधन दिए, सुविधाएं दी, सब कुछ रिफाइन करके दिया। लेकिन इंसान कहां रिफाइन है? ये सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं है, संतुष्टता नहीं है। आज अपने आप से ही आप क्वेश्चन पूछो, क्या आप अपने जीवन की स्थिति से संतुष्ट हैं? आपको जो बीवी मिली है उनसे संतुष्ट हैं? आप अपने बच्चों से संतुष्ट हैं? जो नौकरी आपको मिली है उनसे संतुष्ट हैं? सेटिस्फेक्शन जीवन में है नहीं, इसलिए प्रसन्नता नहीं, खुशी नहीं। सेटिस्फेक्शन है तो प्रसन्नता आए, और वो खुशी नहीं है इसलिए तो लाफिंग क्लब में जाना पड़ता है आर्टिफिशियल हंसने के लिए। तो लाओ, प्यार चाहिए, प्यार से संबंध ठीक बनते हैं। सबको प्यार देना, भगवान प्यार का सागर है, हम गाते हैं ना, तू प्यार का सागर है, और हम उनके बच्चे हैं। वो सबको प्यार देता है तो हम भी सबको प्यार देंगे। फेथ, फेथ विश्वास, ये क्या कर सकेगा, इसमें मैं नहीं मानता हूं ये कर सकेगा, नहीं, हमारा अनुभव है। आप विश्वास और शुभ भावना रखेंगे तो साधारण व्यक्ति भी विशेष बन सकता है। आज यहाँ हम क्या है, कोई हम थोड़ी हाईली एजुकेटेड है, या इतने डिपार्टमेंट जो वर्क कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल नहीं, लेकिन विश्वास और प्यार के साथ इन्हें जिम्मेवारी दी गई, और सचमुच मैं अपनी आंखों देखा बता सकती हूँ, मुझे आज इस संस्था में 35 वर्ष हुए। 69 में हम पांडव भवन आए थे, वही भाई वही बहने जो अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते थे वो क्या थे, और आज ये तीनों कॉम्प्लेक्स के इतने बड़े कारोबार को संभालते हैं, केवल इसलिए कि दादियों ने विश्वास रख, भूले भी हुई हम लोगों से, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं तोड़ा, भावनाएं हमारे से नहीं बदली। आज हमारे हरेक सेवा केंद्र, आप मानेंगे नहीं, विश्वास पर ही बहने बहनों को दिए जाते, हर एक सेवा केंद्र इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, लेकिन पूरे विश्वास पर दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि वो बहनें इतना ही दिल से हेडक्वार्टर में भी मदद करते, हेडक्वार्टर को सभी केंद्र मिलकर चलाते, और उतना हेडक्वार्टर भी उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो विश्वास जब भगवान ने हमारे में रखा और हमें योग्य बना के सेवा करा रहा है, तो हम दूसरों में भी रखें कि ये भी महान बन सकते। ये तो सुधरेगा ही नहीं, ये बदलेगा ही नहीं, ये भावना और ये शब्द व्यक्ति को उठने नहीं देते। जब मैं रियलाइज कर सकती हूँ तो ये भी तो करेगा, आज नहीं कल। रिस्पेक्ट, एक दो को रिस्पेक्ट दे, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। हम हर एक खुद क्या चाहते, हमारा कोई अपमान करे, हम क्या चाहते कि हर एक मुझे मान दे, स्थान दे, सम्मान दे, मुझे साथ दे, सहयोग दे। तो सबसे पाने की विधि क्या है, खुद दो, पहले दो तो स्वतः मिलेगा। प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, सुख देंगे सुख मिलेगा, रिस्पेक्ट देंगे रिस्पेक्ट मिलेगा। इस संसार कर्म क्षेत्र का नियम है, जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। इसलिए अगर मुझे सबसे रिस्पेक्ट चाहिए, मैं सबको रिस्पेक्ट। और आपने अनुभव किया होगा कि जब आप किसको प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, वो खुद झुक के हमें उठा लेते। हम अकड़े हुए चलते हैं तो हमारे हेड और हार्ट में समीपता नहीं है, ईगो आता है, इसलिए दूसरे हमें कैसे मान दे। इसलिए भारत और विदेश में अंतर देखो, वहां एक दोस्त से मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, भाई हम पांच गुना मान देते, लेकिन भारतवासी नमन करते हैं कि हम दस गुना मान दे, और पांव पड़ते हैं, बीस गुना हम मान देते। रिस्पेक्ट दे, कोई एज से बड़े हैं, कोई ज्ञान से बड़े, कोई अनुभव से बड़े हैं, कोई अपनी पोजीशन से बड़े हैं, कोई अपनी कला से बड़े हैं, कोई धन से बड़े हैं, किसी भी बात से बड़े हैं ना, तो हमें रिस्पेक्ट। ये नहीं कि दूसरे अवगुण चित्त में रखें और हम उनकी विशेषता को भी रिस्पेक्ट ना दे सके, ऐसा नहीं। लॉयलिटी, एक दो के प्रति लॉयलिटी, वफादारी, व्यक्ति एक दो के प्रति लॉयल होना चाहिए। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, सच्चाई, सफाई, प्रामाणिकता, ईमानदारी जिसको कहते हैं। आज हम अपने इन वैल्यूज को छोड़ देते और कारण ये कहते हैं कि लोग ऐसे हैं, जमाना ऐसा है, समय ऐसा है, सच्चाई से चल नहीं सकते। बेईमानी करने वाले आगे बढ़ गए, पैसे वाले हो गए, हम ईमानदारी से चले, हम ऐसे कैसे रहे। इसलिए छोड़ो ईमानदारी को, बेईमानी करो, छोड़ो सच्चाई को, झूठ धोखाधड़ी करो। हम वैल्यूज को छोड़ रहे हैं, कमजोरियों को धारण कर, इन कमजोरियों के आधार पर जीवन चला सकते हैं, कभी भी टूट जाए। इसलिए ईमानदारी, एक दो के प्रति ईमानदारी, सच्चाई, बहुत सामान्य बातों में जहां आवश्यकता नहीं है वहां भी हम झूठ बोलते, बेईमानी, क्योंकि आदत पड़ गई है। जरूरत नहीं है, फिर भी हम देखते हैं बहुत छोटी छोटी बात। सैक्रिफाइस, क्योंकि स्व केंद्री बन गए ना, एक दो के लिए हम त्याग नहीं कर पाते, बलिदान नहीं देते। पहले क्यों मिलके चलते थे? क्योंकि हम बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बड़ों के लिए त्याग कर सकते थे। अब हम त्याग नहीं कर सकते, हम भोगना चाहते। कौन उसके पास बैठा रहे, कौन उनकी सेवा कर, हम भोगना चाहते, एंजॉय कर। लेकिन जीवन में हर एक के सामने बीमारी आती है, हर एक के सामने परिस्थिति आती है, हर एक को एक दो की आवश्यकता है। कहते हैं एक फैमिली में जो माँ बाप थे, वो उनके वो बहन जो थी अपने सास ससुर को ये मिट्टी के बर्तन में खिलाती थी, क्योंकि खिलाएं और धोना पड़े, इसलिए खिला के वो तो फेंक सकते हैं। तो उनका जो बच्चा था वो सारे फेंके हुए मिट्टी के बर्तन इकट्ठे करता था। तो मानेगा ये तुम क्यों इकट्ठे करते खाए पे जूठे बर्तन? कहते तुम जब बूढ़ी होगी तो तुमको भी तो खिलाने के लिए मुझे ये बर्तन चाहिए ना, इसलिए मैं इकट्ठा करती। क्यों? क्योंकि हम सेवा नहीं कर पाते, एक दो के लिए समय देना नहीं चाहते हैं, कुछ अपना छोड़ना नहीं चाहते, त्याग नहीं करना। बच्चों की एग्जाम है, हम कहेंगे भी तुम टीवी नहीं देखो और हम देखेंगे तो क्या होगा? वो कैसे सीख छोड़ेगा? तो त्याग और बलिदान की भावना नहीं। और इतिहास पढ़ो, चाहे धर्म के लिए, भक्ति के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, राजाओं ने उनके इतिहास को पढ़िए, कितना बलिदान उन्होंने दिए। उस कुर्बानी पर ही तो विकास होता है। चलो हमने एक घंटा घूमना छोड़ के एक घंटा कोई बीमार के पास हम बैठे, उनका हालचाल पूछा, तो क्या है? हमें अपने कर्म में आनंद आना चाहिए, आनंद के लिए और कोई साधन थोड़ी लेने, हमें अपने आप में आनंद आना चाहिए। पर हमारे अपने में नहीं है, इसलिए हम चीजों से लेना चाहते। सिंशियर रीति, हार्मनी, हार्मनी, टॉलरेंस, ये कितने इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। हार्मनी तब आ सकती है ना जब एडजस्ट करें। हार्मोनियम क्यों कहते, कैसे बजता है? सुर मिलाते हैं हर साधन के, तब जाके एक अच्छा गीत और संगीत बनता है। हमारा जीवन संगीत बिगड़ क्यों गया? क्योंकि हम मिलके नहीं चल पाते, एक दूसरे एडजस्ट नहीं कर पाते। एक कंपनी वालों ने हमें बताया कि हमने एक सर्वे किया था और उसमें ये रिजल्ट हमें मिला कि एक भारतीय के अंदर 3 जैपनीज जितनी काम करने की क्षमता। जैपनीज जानते हैं ना, जिन्होंने अपने खत्म हुए देश को आज विश्व में नंबर 1 कर दिया, केवल एक देशभक्ति और डिवोशन की भावना, हार्डवर्क। ऐसे जैपनीज की तुलना में एक भारतीय में 3 जैपनीज जितनी काम करने की क्षमता। और सचमुच ये रियलिटी, जो कॉमन सेंस, सूझ समझ भारतवासी में है, मैंने देखा कहीं नहीं। लेकिन उन्होंने बताया कि जब 2 भारतीय मिलते हैं तो एक ही जैपनीज जितना काम कर पाते, और जब 3 मिलते हैं तो उन्होंने कहा काम ही नहीं होता, क्योंकि हम एडजस्ट नहीं कर पाते, मिलके चल नहीं पाते हैं, इसलिए टीम स्पिरिट आती नहीं। हम एक दो के अवगुण देखते हैं, एक दो के पांव खींचते हैं गिराने की कोशिश करते, हम एक दो के गुण देखें मिलके चलें वो नहीं। एडजस्टमेंट पावर चाहिए तब तो हार्मनी आएगी। बड़ी दादी जी बड़ा सरल अर्थ कई बार बताती कि हार्मनी माना हार मान ली, बस झुक जाओ, अड़े नहीं रहो। अकड़ते हैं इसलिए टकराते हैं और अलग होते, डिसयूनिटी होती। ठीक है कोई बात नहीं, उस घड़ी आप अपनी हार मान लो, कोई बात नहीं भैया तुम सच्चे हो। बस जब ठंडा मिजाज हो फिर आप उसको रियलाइज करा सकते हैं। उस समय तो गरम तवा है ना, इसलिए वो छीते जो ज्ञान के डालेंगे वो भी उड़ जाएंगे। इसलिए उस समय झुक जाओ, आप हार मान लो, कोई बात नहीं, बस तुम राइट। फिर जब मिजाज ठंडा होगा उसको भी रियलाइज होगा और आप समझाएंगे वो भी स्वीकार होगा। टॉलरेंस सहनशीलता, सहनशीलता ही तो कम हो रही है। हमारे बड़ों ने उनके बड़ों का सहन किया, हमने अपने बड़ों का किया, आज के बच्चे में है सहनशीलता, तुरंत रिएक्ट करते। सहनशीलता नहीं है इसलिए रिएक्ट कर, उसने ऐसा किया मैं भी ऐसा, ये ऐसा करती है तो मैं दो बोलूंगी, तुरंत रिएक्ट। जबकि हम हैं कौन है, हम इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर, हमें एक्ट करना है। लेकिन हम मोस्टली क्या करते हैं, रिएक्ट कर, हम एक्ट नहीं करते, रिएक्ट करते। तो उसने किया, उनकी अपनी लायकात, उनके अपने संस्कार अनुसार की, मेरी अपनी कोई महानता नहीं है, मेरे अपने कोई सिद्धांत नहीं है, मेरे जीवन की कोई पॉलिसी नहीं है जो मैं कह रही हूं कि उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा करूंगी। लेकिन इंटरनली हम पावरफुल नहीं है, इनर स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए टॉलरेट नहीं कर पाते। तब कहा जाता है कि जो नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति वाला है वो ही सहन कर। सिंपथी, सिंपथी सब पेथी से सबसे सफल पेथी है सिंपथी। जहां कोई पेथी काम नहीं करती उस पेशेंट को कैसे हो भैया, ठीक हो ना, जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, बस ये सिंपथी उसको जल्दी क्योर कर दे। इसलिए हमें यहां कहते हैं कि दवा दुआ और योग तीनों से अपने आप को ठीक कर, एक दो के प्रति सहानुभूति। आखिर हम लिविंग एंटिटी है, हम जड़ तो नहीं है ना, जो एक दो को हम सेंस ना कर सके। हाँ, हमारे आसपास हमारे साथ जो भी रहते हैं जीते हैं चलते हैं, अगर वो दुखी है बीमार है अभाव में है तो हमारे में सहानुभूति, रहम दिल, कॉपरेशन, एडजस्टमेंट, सहयोग, सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता, फॉरगिवनेस, माफ करें, एक दो को माफ करें, भूले सबसे होती है, हम माफ नहीं कर सकते, इसलिए मन में बना के रख। और कहते भी है लोग, मुझे याद है 25 साल पहले की बात, मुझे याद है उसने मेरे साथ ऐसे किया। और भगवान को याद करना तो कहेंगे बहन जी भूल जाते वहां याद शक्ति कैसे आ गई। हमने कई इंसिडेंट्स में ऐसी बातें रियलाइज की,
हम कहते हैं ना कंसंट्रेशन पावर नहीं है, मन भटकता है, टीवी देखने में कैसे कंसंट्रेट हो जाते हैं? वहां तो जो खाते हैं ना वो खाना भी भूल जाते हैं, रह जाता है। बच्चों को कहना पड़ता है पहले खाना खा लो फिर देखो। पति पत्नी घर में बैठे हैं, कोई कारण से आपस में झगड़ रहे, आपस में क्लैश हो रहा है, अचानक कोई मेहमान आते हैं, दोनों उठ के क्या कहेंगे? आइए आइए, प्यार से वेलकम करेंगे। वो प्यार कहां से आ गए? अभी तो था नहीं आपस में, वहां कैसे आ गए? तो है, अंदर वैल्यूज है, पर आपस में एडजस्टमेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ईगो है, इसलिए वो वैल्यूज अप्लाई नहीं हो रहे। जो प्यार से वेलकम मैंने उस मेहमान को किया वो आपस में भी तो मैं कर सकती थी। तो ये कुछ गुण है, हम अपने में डेवलप करें, हम अपने संबंधों को ठीक कर सकते हैं। कैसी भी एंगियालोरिटीज वाली पर्सनालिटी हो, टेढ़े बांके संस्कार वाले, उनके साथ भी हम चल सकते हैं। वो पावर के लिए ये विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, तो वो हमारे में डेवलप होता है और हम आसानी से कर सकते हैं। हमारे संबंध चार लेवल से है, ये तो मैंने सिर्फ आपसी संबंध की बात की, लेकिन सबसे पहला संबंध है विथ सेल्फ, अपने आप से संबंध। सेल्फ, और आज हम अपने आप से ही दूर हो गए, हमें अपने आप के लिए ही फुर्सत नहीं। आपकी अपॉइंटमेंट डायरी में सबके नाम होंगे, आपका अपना नाम है हाँ, कि आज मुझे शांति से 15 मिनट मुझे अपने साथ बैठ। हमारी दिनचर्या में खुद के लिए है समय, हम अपने आप से ही दूर हो गए हैं, बल्कि हम खुद को ही भूल गए। आप कल शाम से इस हॉल में आ रहे हैं हाँ, परसों से हाँ, भाई उठेंगे आप नीतीश हाँ, आप ने ये हॉल देखा है? आप आंख बंद करके बताएं कि इसमें अभी क्या क्या है। आंख बंद करके, आंख बंद करके बता दें कि इसमें अभी क्या क्या है, इस हॉल में क्या क्या है। हाँ, ट्यूबलाइट्स हैं और स्पीकर हैं बहुत इजी है, क्या क्या है बस ये भाई ने बता दिया तो सोचना इतना पड़ता ही नहीं ना, है ना? देख, हम सोचते ये है वो है फलाना, पर मैं हूँ, लोग कहेंगे कुर्सियां हैं, बहुत लोग हैं, माइक है, बेंजी है, ये है, पर मैं हूँ भूल जाते। वैसे थैंक यू, खुद को ही हम भूल जाते, हम अपने आप को देखते नहीं है, अपने इनर वॉइस को सुनते नहीं है, हम अपने आप को सिखाते नहीं है, क्योंकि हम अपने आप से बैठते नहीं। तो खुद से हमारा संबंध, खुद से बातचीत, खुद को देखें, खुद को रियलाइज कराएं, खुद को सुने इनर वॉइस को, खुद को सिखाएं, खुद को एश्योरेंस दे कि कोई बात नहीं, आज मेरे से भूल हो गई, अब मैं नहीं कर, अब मैं दृढ़ता करता हूं, मैं जरूर ये परिवर्तन कर, एश्योरेंस दे। दूसरे, हमारे आपस से रिलेशन, उसकी काफी बातें हमने आपस में की, तीसरा है रिलेशन विथ नेचर। हमारे आसपास की जो प्रकृति है, पशु पंछी जगत, जो हमें सुख देते हैं, आनंद देते हैं, जो इस संसार की शोभा को बढ़ाते हैं, पर्यावरण को ठीक रखते हैं, इस प्रकृति से भी हमारे संबंध, आप उनको भी प्यार। कुछ नहीं कर सकते हैं, मीठी दृष्टि से देखिए। मैंने देखा था दादी जी एक बार बहुत प्यार से पौधों को देख के जाते, प्यार से देख, शुभ भावना। प्रकृति के कितने उपकार है हमारे पर, हम उनको स्पॉइल ना करें, हम उनको बना के रखें। और हमने ये देखा है कि जितने हमारे शुद्ध वाइब्रेशन होंगे, प्रकृति भी इतनी सुखदायी है। और चौथा लेवल है, कौन बताए, एक और रिलेशन विथ सुप्रीम। हमारे उनसे भी संबंध है, बल्कि वो हमारा सब कुछ है, है ना? क्या गाते हो, कौन सा श्लोक गाते, भगवान हमारा क्या क्या है, त्वमेव माता पिता बंधु गुरु सखा स्वामी सर्वस्व है, हा? जो सर्वस्व है उनके साथ तो दिल से बात करनी है ना, तो बैठिए, जो बात कहीं नहीं कर सकते हो उनके साथ करिए। क्योंकि एक तो वो सदा हमें सुनने तैयार है, कईयों को हम सुनाना चाहते हैं पर उनको फुर्सत ही नहीं है, किसको सुनाएं, आपको टाइम कहाँ है, हम कहते हैं ना, ये वो है जो सदा हमें सुनने तैयार। ट्रस्ट, हमारी कही हुई बात वो किसी को नहीं कहेगा, मिसयूज नहीं करेगा। आप दिल की हर बात सुना दीजिए, जो आप सह नहीं सकते हैं, किसी को कह नहीं सकते हैं, वो सब कुछ मन से उनको बता दीजिए, उनसे बातचीत करिए। भगवान केवल पुलिस नहीं है जो गुनाह स्वीकार करते रहे, माफ करना ये करना, अरे वो हमारा पिता है, हम छोटी मोटी हर बात उनसे कर सकते और वो पॉजिटिवली हमें हेल्प करेगा। तो रोज उनसे भी बैठिए, मिलिए, बात करिए। तो ये चारों लेवल के रिलेशन को हमें अच्छा बना देना है तो हमारा जीवन भी सुखमय और ये संसार भी सुखमय बन जाएगा। ओम शांति।